So today is Monday, 17th of April 2017. We're reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 9, text 73 through 79.
आज सोमवार है 17 अप्रैल 2017 और हम चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं मध्य लीला अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 72 से 79.
स्मित व्राह देखे तनरे नमस्कारी पीतंबरा शिव स्थाने गेल गौरहरी. Ridaloka, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu visited the temple of Sveta Braha, the white boar incarnation. After offering him the respects, the Lord visited the temple of Lord Shiva, wherein the deity is dressed with yellow garments.
Payar Sankhya 73, Anuvad. Vridh Kol mein Sri Chaitanya Mahaprabhu ne Bhagwan Shvet Varaha ka mandir dekha. Unhe namaskar karne ke baad महाप्रभु शिवजी के मंदिर गए जहां अर्चा विग्रह को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं.
Before we go any further, let us offer the Guru Parampara pranams, please. So the first point is that Chaitanya Mahaprabhu, by his personal example, he's going to darshan even of temples of Lord Shiva. So we have to take note of this.
तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से ये सिखा रहे हैं कि वे अलग अलग शिव जी के मंदिरों में जा रहे हैं, तो हमें इसका इस पर ध्यान देना होगा.
A neophyte fanatic devotee in our line might be thinking, oh Lord Shiva, he's demigod, you know, we don't worship demigods, and you know, the word boycott, you know, I mean, they might refuse to offer respects to Lord Shiva and bypass the temple. This kind of mentality, somebody who has no training in Krishna consciousness, they could easily have a neophyte, a really low-grade devotee, could have that kind of offensive mentality. It is amongst some people, fortunately not hugely common, but it is there if they're not properly educated.
So, a kanishth bhakt, jo ki thoda sa kattarvadi hota hai, uske andar aisi mansikta hoti hai ki ve भगवान शिव को एक देवी देवता देखते हुए उनको अपराध रूप भावना से देखता है और उनके मंदिरों को अच्छे से वो आदर नहीं कर पाता.
At Yogapeeth also we see there's a temple of Lord Shiva there, and all the pilgrimage Jayapataka Swami originally trained all the pilgrims. The proper obeisances must be offered to Lord Shiva. So you offer in a different direction, that's all.
तो जब हम मायापुर नवदीप मंडल परिक्रमा करते हैं तो योगपीठ में भगवान शिव का एक मंदिर है, तो हिज होलीनेस जयप्रताका स्वामी महाराज सभी भक्तों को ये सिखाते हैं कि कैसे हमें भगवान शिव के भी आदर देने हैं और उनको भी प्रणाम करना है.
So actually we don't shun, you know the word shun, we don't reject the demigods. We don't reject them.
तो वास्तविकता में हम देवी देवताओं का बहिष्कार नहीं करते हैं.
So otherwise, what is the? I think it's a Shiva Linga, isn't it, at Yogapeeth? Yes. So we don't reject. We offer. We are trained by Acharya that we must offer respect properly to Lord Shiva always.
तो हम इन देवी देवताओं को बहिष्कार नहीं करते, नहीं तो फिर योगपीठ पर भगवान शिव का मंदिर होने की क्या जरूरत थी. आचार्यों ने हमें ये सिखाया है कि कैसे हमें देवी देवताओं को भी यथा योग्य सम्मान देना चाहिए.
Similarly, Durga and Kali, we offer respects.
उसी प्रकार से दुर्गा माता और काली माता को भी हम आदर करते हैं.
But with proper training in Krishna consciousness and reading Prabhupada's books, then we understand that they are the Saivites of Lord Vishnu. As long as that point is understood, there's no confusion.
जब हम श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथों का ढंग से अध्ययन करेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि सभी देवी देवता भगवान विष्णु के सेवक हैं, और जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा.
So Kali and Durga, they are expansions, they are the wife of Lord Shiva.
जो काली हैं वो भगवान शिव की भार्या हैं.
So this the relationship of Kali, I mean, everybody knows that Kali is the wife of Lord Shiva, right? Hindus know that, right? Isn't it? Yes, no? They know that she's the wife of Lord Shiva. But, I mean, in the Bhagavatam, not so much emphasis on Kali, but Parvati is there. And Kali is expansion of Parvati. Parvati is the sweet, dutiful, very beautiful wife of Lord Shiva, his eternal consort.
तो काली माता भगवान शिव की भार्या हैं ये इस बात को हिंदू समाज में सभी लोग जानते हैं लेकिन भागवतम में माता पार्वती को के बारे में बताया गया है कि वे शिव जी की बहुत ही सुंदर भार्या हैं और काली माता उनकी विस्तार हैं
You want to see the relationship of Kali and Lord Shiva you have to read the story of Tulsi Devi
अगर आपको काली माता और भगवान शिव का संबंध समझना है तो आपको तुलसी महारानी की कथा को पढ़ना होगा
And her husband, Shankarchuda, the demon.
और उनके जो पति हैं शंखचूड़ जो राक्षस थे
How many of you have read that story?
कितने भक्तों ने उस तुलसी महारानी की इस कथा को पढ़ा है
Most of you have not read the story.
ज्यादातर भक्तों ने नहीं पढ़ा
Well, actually, it's a must-read, you know, must-read. You can't understand Tulsi Devi properly unless you read that story.
ये कथा को जानना और पढ़ना बहुत आवश्यक है और सबको पढ़ना चाहिए. आप तुलसी महारानी को ढंग से नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इस कथा को नहीं पढ़ेंगे.
The whole pastime is given how she descended into the material world and how she ended up marrying a demon.
पूरी की पूरी कथा बताई गई है कि कैसे वो भौतिक जगत में आती हैं और वो एक राक्षस से उनका विवाह होता है
how Shankarchuda never forgot his swarup from Goloka Vrindavan Shankarchuda was a friend of Krishna's from Goloka Vrindavan and then he was cursed by I think it was Radhika isn't that
Shankarchuda भी अपने स्वरूप को नहीं भूलते वो भी भगवान कृष्ण के एक सखा होते हैं गोलोक वृंदावन में और राधा रानी के शाप की वजह से वे असुर योनि में जन्म लेते हैं
Was it Subal? Subal? Krishna's friend. Who has read the story? You have not read the story?
Subal.
Subal, yes. Because Subal is a, you know, He's different, you know. Subal is different, you know. He's one of the few cowboys to interact with Radhika. Sometimes that can be a little risky. The story is there. Somebody have a net on your phone, then check it. Because you look on Brinda Devi's webpage. You know that Brinda Devi has her own webpage? You know that? Yes? No? Brinda Devi is a big devotee. She has her own webpage. You please look on there to confirm. BrindaDevi.com. She's a big devotee. The story is there. So everybody must read that story. So anyways, Kali, the description is given there that Kali joined with Lord Shiva in fighting against the demon. She's the wife of Lord Shiva and she's a warrior, so she's a kshatriya.
तो कथा में ऐसा विवरण आता है कि जब भगवान शिव जालन तुलसी महारानी के हस्बैंड से फाइट कर रहे होते हैं तो काली माता भी उनको साथ देती हैं और वो भी एक वॉरियर हैं
So she was very hungry, so she swallowed 10,000 of the enemy soldiers in one gulp. She was hungry.
तो वो बहुत भूख लग रही थी उनको तो उन्होंने एक ही बार में 10,000 शत्रु के सैनिकों को निगल लिया
So we see she fights on behalf of her husband. So we see the relationship, you could say ideal husband-wife relationship that she supports her husband very nicely.
And तो हम देख सकते हैं कि काली माता अपने भगवान शिव के साथ लड़ने भी जाती हैं और अपने पति का पूरा सहयोग करती हैं तो ये एक आदर्श पति पत्नी का उदाहरण है
It's a very dynamic story. Everyone must read this story. The fight between Lord Shiva and the demon went on for one whole year.
And
they were personal fighting because he was not an ordinary demon, you see.
और इसको सभी भक्तों को पढ़ना चाहिए ये पूरा युद्ध एक साल तक चला था
He could only be defeated by trickery of Lord Vishnu that's the only way he could be defeated otherwise he was too powerful
तो वो जो दानव था वो इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव भी उनसे युद्ध में जीत नहीं पा रहे थे जब भगवान विष्णु ने थोड़ी चालबाजी की तब वो जीत पाए
Did you find brinadevi.com Anyways, so the point is that we don't seek out the demigods, but we offer all respects. And Parikram, Navayam Parikram, I believe there's some Kali deities, other deities like that along the way also, isn't it?
तो मुख्य बात ये है कि हम देवी देवताओं को आदर सम्मान करते हैं.
And the Parikram party is instructed by our acharyas to offer respects. We don't just pass them by. No, we don't worship demigods. That is aparad, actually, and it's an offense against the holy name also. One should not disrespect the demigods.
So, when we go to Navadvip Mandal Parikrama, the acharyas have given us this instruction that we should also honor the devi devatas. And if we don't do this, then this is Hari Nam's prati aparad.
So this we can learn from these descriptions that Chaitanya Mahaprabhu at this time was playing the role of the perfect acharya and he is demonstrating how this respect must be offered to these exalted devas.
So we can learn from this description that Swayam Shri Chaitanya Mahaprabhu acharya ki bhumika nibhate hue hame sikha rahe hain ki kaise hame in devi devtaon ko aadar dena chahiye.
So there is a purport to this verse 73. The temple of the white boar incarnation is situated at Ridaloka or Sri Mastam.
तात्पर्य प्यार संख्या 73 में है तो उसने प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्वेत वराह का मंदिर रिद्ध कोल या श्री मुष्णम में है
The temple is made of stone and is located about 1 mile south of an oasis known as Balipitam. So 1 mile is How much kilometer? 1.6 kilometers.
यह मंदिर पत्थर का बना है और बलि पीठम हरितास्थान में से लगभग 1 मील दक्षिण में स्थित है.
It's interesting that Srila Prabhupada uses the word oasis, which would indicate it must be a very dry area. I don't think anybody's been there to this temple. But it must be a very dry area, and then there's a green area apparently surrounding this sacred town, and thus Prabhupada refers it to as oasis. Yes.
तो ये जो जगह है यहाँ पर थोड़ा सूखा है और इसीलिए श्रील प्रभुपाद हरित स्थान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं.
Everybody know the meaning oasis. Anybody does not know what oasis means?
Harit sthan shabd ka arth kaun nahi janta?
It's a green area where there's some water and it's usually found in the middle of a deserty area, a very dry area. So that's why we have to conclude that it's a very dry area and then this sacred town is in the is a green oasis in the midst of this dry area.
तो हरित स्थान वो जगह होती है जो कि रेगिस्तान में होती है जहाँ पर थोड़ा पानी मिलता है तो हम यहाँ पे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो मंदिर है ये भी एक सूखे जगह पे है जहाँ पे एक हरित स्थान स्थित है
There is a deity of the white boar incarnation above whose head Sheshanaga serves as an umbrella.
यहाँ पर श्वेत वराह अवतार का विग्रह है जिसके सिर के ऊपर शेषनाग का छत्र है
The temple of Lord Shiva mentioned here is situated Pitambara or Chidambaram, which lies 26 miles, so that's what, about 52 kilometers? Is that right? 26 miles, how many kilometers? south of Chudalore.
शिवजी का मंदिर पीतांबर अथवा चिदंबरम में स्थित है। यह मंदिर कूडालोर से 26 मील दक्षिण में स्थित है और यहाँ शिवजी का अर्चा विग्रह आकाशलिंग कहलाता है।
The deity of Lord Shiva there is known as Akshalinga. The temple is situated on about 39 acres of land, and all this land is surrounded by a wall and a road that is about 60 feet wide. Quite impressive.
यह मंदिर 39 एकड़ भूमि पर स्थित है और यह भूमि एक दीवार और 60 फुट चौड़ी एक सड़क से घिरी है।
Text 74. After visiting the temple of Shiyali Bhairavi, a form of goddess Durga, so Sri Chaitanya Mahaprabhu, the son of Mother Sachi, went to the bank of the river Kaveri.
Payar Sankhya 74, Anuvad. शियाली भैरवी दुर्गा देवी का अन्य रूप मंदिर देखने के बाद शची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी के किनारे गए।
So here we see that Chaitanya Mahaprabhu on pilgrimage is offering our respects to goddess Kali.
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी तीर्थ यात्रा में दुर्गा देवी को भी आदर दे रहे हैं।
The temple of Shiyali Bhairavi is located in the Tanjore district, about 48 miles northeast of Tanjore city.
तात्पर्य शियाली भैरवी का मंदिर तंजौर जिले में तंजौर शहर से लगभग 48 मील उत्तर पूर्व की ओर स्थित है।
48 miles, you're my kilometer man. 75 kilometers north of Tanjore city. It's a very much celebrated temple of Lord Shiva there, and also a very large lake.
यहाँ पर शिवजी का प्रसिद्ध मंदिर है और एक विशाल सरोवर भी है।
It is said that once a small boy who was a devotee of Lord Shiva came to that temple, and the goddess Durga, known as Bhairavi, gave him her breast to suck.
कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त छोटा बालक उस मंदिर में आया और माता दुर्गा ने, जो भैरवी कहलाती हैं, उसे अपना दूध पिलाया।
After visiting this temple, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the bank of the river Kaveri or Kodirana via or by way of the district of Tiruchirappalli.
इस मंदिर को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिचिनापल्ली जिले से होते हुए कावेरी कोलीरन नदी के किनारे पहुंचे।
The river Kaveri is mentioned in Srimad Bhagavatam 11th canto 540 as a very pious river.
Srimad Bhagavatam ke 11th skand ke 5th adhyay ke 40th shlok mein Kaveri nadi ko atyant pavitra mani gayi hai.
So actually the non devotees, they don't talk about it because in modern India the non devotees, under the influence of secularization, they try to make everything mundane. They're doing a good job of it. Of the English word is denigrating. Denigrating means downgrading, pushing everything sacred down to be mundane and never think about any spiritual connection at all.
दक्षिण भारत में जो अभक्त हैं, वो सभी पवित्र आध्यात्मिक वस्तुओं को भौतिक बना रहे हैं।
You got what I said about secularization?
No.
You missed it? It's a very important point. In modern India, the atheistic demons are pushing everything down to become mundane. But in the final analysis, there's nothing mundane about India.
तो आधुनिक भारत में जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सारे भारत के पवित्र स्थानों को भौतिक बनाने पे तुले हैं, लेकिन वास्तविकता में भारत बहुत ही पवित्र स्थान है और इसमें कोई भी चीज भौतिक नहीं है।
Who can say how many square kilometers in India have not been touched by the lotus feet of an incarnation of the Lord or great saints going back to, you know, the beginning of the universe. Who can say which places have not been touched? We don't have the vision. I mean, self realized soul they can see, but we cannot see, you know, but everywhere, practically, the whole land of Bharatvarsha is sacred.
तो ऐसा कौन कह सकता है कि भारतवर्ष की किसी भूमि खंड पर भगवान या उनके अवतार या उनके महान भक्तों के चरण कमल नहीं पड़े हैं अगर हम सृष्टि की शुरुआत से देखें तो इसीलिए भारत भूमि का हर भूमि खंड बहुत ही पवित्र है
Now it'll be interesting to see what happens under the Modi government because back in I guess it was about 1994 After I was in Chennai, we first came to return to India, I should say, first returned to India after long absence.
तुम्हारा जब अपने भारत में वापस आए काफी लंबे अंतराल के बाद तो वे चेन्नई में स्थित थे.
Around about that time, there was an election where the BJP lost the election.
और उस समय एक चुनाव हुआ था और जो बीजेपी थी वो उस चुनाव में हार गई थी।
But at that time, you know, Mr. Vajpayee, he had been the prime minister.
और उस चुनाव से पूर्व वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे।
And if the BJP had won that election, they were going to change the name of India to Bharatvarsh.
और ये और अगर वो बीजेपी उस चुनाव में जीत जाती तो इंडिया का नाम भारत वर्ष कर देती
I wouldn't be surprised if it is on Mr. Modi's long-term agenda to do that. But I mean, he can't do too much at one time. I mean, the people are already shook up about all the radical changes he's making. So he can't do too much at one time. But it's likely down the road that he will do it because that is part of their, you know, program. They were going to do it, but they lost the election in 1993-94
or something. मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का भी ये एक एजेंडा है कि वो इंडिया का नाम भारत वर्ष में रखना चाहते हैं परंतु अभी क्योंकि बहुत सारे चीजें वो कर रहे हैं बहुत सारे बदलाव ला रहे हैं तो एकदम से बहुत सारे बदलाव वो नहीं लाना चाहते
Actually, it's almost inevitable that the name of India will be changed back to Bharatvarsha. Almost inevitable. That is prediction.
तो ये भविष्यवाणी है कि ऐसा निश्चित है और कि भारत इंडिया का नाम चेंज होगा
Do you realize the impact when the name of such a prominent nation because it's fair to say that India is a powerful nation that's fair to say you know it's been was undervalued until recently but India is actually a powerful nation
तो भारत बहुत ही शक्तिशाली राज्य है और देश है और अभी तक इसको बहुत ही कम में आंका जाता था
Do you realize what will happen? I'm almost 100% certain that down the road, it may take a few years, that they will change the name back to Bharatvarsha. Almost 100% certain because they were going to do it before.
तो ये तो निश्चित ही है कि वो कुछ समय बाद इंडिया का नाम भारत करेंगे और जब वो ऐसा करेंगे तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा क्या आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं
So you realize what will happen when inevitably the name of India is changed to Bharatvarsha Mahavir or I mean Paramvir Do you realize what will happen when the name of India is changed to Bharatvarsha who could guess
to kaun iska anuman lagana chahega ki jab bharat ka india ka naam bharat ho jayega to kya prabhav padega haath khada kijiye
no guesses yes
people will read shrimad bhagavatam because the description comes from there
people will read shrimad bhagavatam because description comes from there
Yes, people will read Shrimad Bhagavatam. Hare Bhag!
Hare Bhag!
Mohan Gurchan Puji ne uttar diya ki jab India ka naam Bharat ho jayega, to log Shrimad Bhagavatam ka adhyayan karenge kyunki वहां पर इसका पूरा वर्णन आता है भारत भारत का.
First of all, the whole world would be very, very shocked and very, very shook up about by this almost inevitably down the road, Marcus prediction.
सबसे पहले तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो हिल जाएगा जब ऐसा होगा तो.
I'm making this prediction on the 17th of April, 2017. It's not a joke. It's not a joke. It's almost inevitable that the name of India will be changed back to Bharat Varsh.
तो महाराज की ये भविष्यवाणी है आज के दिन की ये निश्चित रूप से होगा कि इंडिया का नाम दोबारा से भारतवर्ष रख दिया जाएगा.
The impact will be massive.
और इसका बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभाव.
Because it means the resurgence. You know the word resurgence? No. Study up. The return of Vedic culture. Arriba!
Arriba! तो इसका प्रभाव ये होगा कि जब दोबारा से इंडिया का नाम भारतवर्ष होगा तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव होगा कि दोबारा से वैदिक संस्कृति दोबारा से आएगी.
Because then billions of people around the world, everyone will be talking about India. Why did they do that? Why did they change the name? Why? What was wrong with India? Why did they change the name? Billions of people will be asking that question, huh? And some of them will mention the name of Lord Vishnu and some of them will mention the name of Krishna. Wow.
तो जब ऐसा होगा तो पूरे विश्व में अरबों खरबों लोग सभी ये चर्चा कर रहे होंगे कि ऐसा भारत इंडिया का नाम भारत क्यों रख दिया गया. तो फिर इस प्रश्न के उत्तर रूप में कोई कृष्ण भगवान का नाम लेगा, कोई विष्णु भगवान का नाम लेगा और ये बहुत ही अच्छा होगा.
It'll be the final nail. You know, there's a saying in the West, the nail in the coffin. You know, in the West, they use coffin. Coffin means a wooden box, you know, that you put dead bodies in, you know.
तो पाश्चात्य जगत में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको कॉफिन में रखते हैं. ताबूत.
Well, see, it's a foreign concept in India, but it's not done in India, you know, but it's a Western thing.
ताबूत एक पाश्चात्य जगत का सिद्धांत है.
So it's an old saying, putting a nail in the last nail in the coffin means end. That's it. Bam, you put the last nail and finished.
तो जब ऐसा जब भारत का इंडिया का नाम भारतवर्ष रखा जाएगा तो ये बहुत ही बड़ा प्रहार होगा. Nail in the coffin
indicates that the final end of the contamination from the British propaganda of the 1800s, it'll be the final end, the nail in the coffin. It'll be the final end to the era of the British propaganda that there's a English word denigrated, I said downgraded India to a primitive nation instead of the glorious Vedic culture.
तो जब ये रखा जाएगा भारत दोबारा से भारतवर्ष नाम होगा इंडिया का तो जो कि ब्रिटिश लोगों का जो ये प्रोपेगेंडा था कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है उस प्रोपेगेंडे का पूर्ण रूप से खात्मा हो जाएगा और दोबारा से भारत की जो प्रतिष्ठा है कि वो महान वैदिक संस्कृति को करता है रिप्रेजेंट करता है वो स्थापित होगी.
And Congress actually dared to put out a news release some years ago that said there never was a golden Vedic era in India. It's nothing but Hindutva propaganda. They published that front page in the newspapers. They dared to do like that. Excuse me, but how much more demoniac can you get?
तो कांग्रेस ने एक बार ऐसा एक आर्टिकल पब्लिश किया था पेपर में कि उन्होंने बोला कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई सुनहरा वैदिक समय युग था भारत में और ये सिर्फ केवल हिंदुओं का एक मान्यता है. तो ऐसा ये इस प्रकार का जो राक्षसी आर्टिकल है वो कितना वो लिखेंगे.
So here is mentioned the river Kaveri.
तो यहाँ पर कावेरी नदी का उदाहरण दिया गया है.
And the Kaveri, Prabhupada points out that the river Kaveri is mentioned in Srimad Bhagavatam as a very pious river.
और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कावेरी नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है भागवतम में.
Actually, it's fair to say that the majority, at least of the major rivers anyways, the majority of the major rivers in India are sacred rivers. Is it not? Correct me if I'm mistaken. The majority of the greater rivers and the most famous rivers, you know, they are all sacred rivers.
ऐसा कहा जाता है कि भारत में जितने भी महान नदियां हैं वे सभी बहुत ही पवित्र हैं.
But people only have a rough idea of this, and they know about the Ganga, and they know about the Jamuna and so forth. These are most famous.
तो लोगों को गंगा और यमुना के बारे में तो पता है, ये सबसे प्रसिद्ध हैं.
Godavari also, I think Godavari is a expansion of Ganga, I think, is it?
Yes.
Godavari Ganga ka vistar hai.
Yes.
So, because Ganga Devi, she's expanded all over the place. You can go places, for example, in South India. I went to one temple where there is fountains on the side of the mountain and water is coming out as Ganga Devi. So all over India in various places, Ganga Devi is coming. Miraculously, she's coming out in many places in India out of rocks and fountains and so forth, up in Nepal also.
तो गंगा देवी भारत के हर क्षेत्र में हमको पाई जाती हैं. और महाराज एक मंदिर में गए थे दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर भी बहुत ही चमत्कारी रूप से गंगा देवी एक चट्टान में से आ रही थी और फाउंटेन बन रहा था.
So one of the responsibilities of this movement is to reinvigorate. Do you know the word invigorate? No? Study up. Do you know the word invigorate? No? It means put new energy.
तो एक महान जिम्मेदारी हमारे आंदोलन की ये भी है कि हम एक बहुत ही नव ऊर्जा इस विषय में संचारित करें.
This movement, one of the missions of this movement is to put new energy to revive the basic understanding that Barsvars is a sacred place. Because all the incarnations have walked all over the place, and all the Vaishnava saints like Vidura, they have walked all over. Lord Balaram himself went on pilgrimage all over Nityananda Prabhu, Mahaprabhu. So practically they've covered all of India.
तो हमारे आंदोलन की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम दोबारा से इस भारतवर्ष को उसकी जो महिमा है उसका स्थापना करें कि भगवान के महान भक्तों ने और स्वयं भगवान ने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम जी ने इस पवित्र भूमि पर अपना भ्रमण किया है.
For example, Bengal is a fairly large sized state, you know, and of course Bangladesh used to be part of Bengal.
उदाहरणार्थ बंगाल एक बहुत ही बड़ा राज्य है और बांग्लादेश भी पहले बंगाल के ही भाग था.
Mahaprabhu ordered Nityananda Prabhu to go to each and every home in Bengal.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी थी कि वे बंगाल के हर घर में जाएं.
So he did.
और उन्होंने इसका पालन किया.
Village to village.
गांव-गांव जाते थे.
Traveling sankirtan.
और वहाँ पर संकीर्तन, traveling संकीर्तन.
No petrol required, no buses required.
बिना पेट्रोल और बसों के.
Pariyatra. So Nityananda Prabhu was doing Pariyatra by himself. I mean, he didn't need anything else, you know. He's Amarama.
Nityananda Prabhu स्वयं पदयात्रा पर थे.
And this is described in which song?
तो ये किस गीत में इसके बारे में बताया गया है?
Hello. Doo-doo. Huh? I think more than one song, actually. Narottam Das Thakur. And Prabhupada reads the purport. Says that Nityananda Prabhu went to each and every home in Bengal. Now, if you want to edit that, go ahead. You understand? You want to edit it? You want to downsize it? You want to cut it down? Translate.
तो एक नरोत्तम दास ठाकुर जी के गीत में श्रील प्रभुपाद जी ऐसा अनुवाद देते हैं कि भगवान नित्यानंद प्रभु बंगाल
में No, it should have been translated. He went to as many homes as possible. We shall rewrite it, shall we?
हर एक घर में गए थे. ऐसा नहीं था कि as many जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा नहीं. हर एक घर में गए थे.
नरोत्तम दास ठाकुर. Is it not? You don't know. It's Narottam Das Thakur.
तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक गीत है.
How many of you heard Srila Prabhupada's purport? It's Nittai Pada Kamalam purport.
ये Nittai Pada Kamal का तात्पर्य आप में से कितने भक्तों ने सुना है?
Purport by Srila Prabhupada.
Srila Prabhupada जी का तात्पर्य.
Prabhupada says very clearly, and he's quoting from Narottam Das Thakur, that Lord Nityananda Prabhu went to each and every home in Bengal.
Prabhupada बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि भगवान नित्यानंद प्रभु बंगाल के हर घर में गए थे.
Village to village, padyatra.
पदयात्रा पे हर गांव में गए.
To each and every house, because that's what the self-realized saint Narottam Das Thakur says. But you can edit it if you want.
हर घर में गए थे क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर जो कि मुक्त हैं उन्होंने बोला है.
So everywhere the saints have traveled all over India since time immemorial.
तो भारत में जो लंबे समय से महान भक्त हर जगह घूम रहे हैं.
But people forget, just like the state of Haryana, you know.
लेकिन लोग भूल जाते हैं. हरियाणा नाम का भी एक शहर है.
You see on the side of the old beat up books Haryana, old beat up buses. Haryana transport, you know, but who knows Hari? Anyone thinking Hari means the Supreme Personality got it? No. Just all mundane. It's dreadful.
तो सभी हरियाणा नाम ये जो राज्य का नाम है तो हरियाणा बस ट्रांसपोर्ट इस नाम से बहुत सारी बसें घूमती हैं लेकिन सामान्यतः कौन सोचता होगा कि हरि जो है वो परम भगवान है तो सब चीज़ों को भौतिक रूप से देखा जा रहा है.
So, text 75. The Lord then visited a place known as Go Samaj.
Payar Sankhya 75. Iske baad Mahaprabhu Go Samaj namak sthan gaye.
Where he saw Lord Shiva's temple. So here's another Shiva temple.
Jahan unhone Shiv mandir dekha.
Then he arrived at Vedavana, where he saw another deity called Shiva.
तब वे वेदावन पहुंचे जहां उन्होंने शिवजी का दूसरा अर्चा विग्रह देखा और उन्हें नमस्कार किया.
So we see as the most perfect acharya, the Mahaprabhu was offering continually and repeatedly all respects to Lord Shiva.
तो हम देख सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही परफेक्ट आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं और भगवान शिव को आदर दे रहे हैं.
Prabhupada comments, Go Samaj is a place of pilgrimage for devotees of Lord Shiva. It is very important and is located near Vedavana.
Srila Prabhupada yahan pe tatpary dete hain, Go Samaj Shiv bhakton ka teerth sthal hai. Yah atyant mahatvapurna hai aur Vedavan ke nikat sthit hai.
76. Seeing the Shiva deity named Amrita Linga, Lord Chaitanya Mahaprabhu offered his obeisances.
पायार संख्या 76 अनुवाद. अमृत लिंग नामक शिव के अर्चा विग्रह को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया.
Thus he visited all the temples of Lord Shiva and converted the devotees of Lord Shiva into Vaishnavas.
इस तरह उन्होंने शिवजी के सारे मंदिर देखे और शिवजी के भक्तों को वैष्णव बनाया.
So previously and prior verses, the same thing is mentioned that Mahaprabhu was converting the devotees of Lord Shiva into Vaishnavas.
पीछे के प्यारों में भी ये बात बताई गई है कि श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी के भक्तों को वैष्णव बना रहे थे.
So, Arbal,
Hare,
do you remember what we discussed last time?
क्या आपको याद है कि हमने पिछली क्लास में क्या चर्चा की थी?
What we discussed in this regards?
About the deities that Lord Chaitanya Mahaprabhu visited.
You're the tech man, come on. Tech man's supposed to be on the job. Yes, we discussed he visited many temples. But I'm saying, what did we? Why was he converting Shaivites into Vaishnavas? Is my
question. प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु कि जो शिवजी के भक्त थे उनको वैष्णवों में परिवर्तित कर रहे थे.
Because Mahaprabhu is a because Lord Vishnu is the supreme absolute truth. Lord Vishnu is the origin of Lord Shiva, and the Hindu priests are not going to put emphasis on that. They may not even know. Generally, they think they're equal. We discussed, remember?
तो महाप्रभु शिवजी के भक्तों को सबसे ऊंचा विज्ञान दे रहे थे कि भगवान विष्णु जो हैं वो सर्वोच्च हैं और शिवजी भी उनके भक्त हैं और उन्हीं से आते हैं. और जनरली जो भी हिंदू प्रीस्ट हैं वो इस पे जोर नहीं देते.
So what was the reason that Mahaprabhu was converting Shaivites into Vaishnavas? What was the reason?
क्या कारण है कि शैवाइट्स को महाप्रभु वैष्णव बना रहे थे?
He's showing his mercy. That's all right. He showed his mercy in many different ways. But why, you know, Lord Shiva is not outside of divine culture. Then why was he converting them? You've forgotten.
भगवान शिव तो वैदिक संस्कृति में ही हैं, तो फिर क्यों चैतन्य महाप्रभु शिव भक्तों को विष्णु भक्त बना
रहे हैं? Yes, because the devotees of Lord Shiva are confused generally under the guidance of their Hindu priest who is not a pure devotee.
ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कि शिवजी के जो भक्त होते हैं वो सामान्यतया विमोहित रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं कि भगवान शिव भी परम भगवान है, क्योंकि जो कि जो हिंदू प्रीस्ट होते हैं, हिंदू पंडित होते हैं, वो उनको सही प्रकार से नहीं शिक्षा नहीं देते.
Does that ring a bell? Yes, it does. Good. We had a thorough discussion on it. That's why Srila Prabhupada says sometimes repetition is necessary.
यद्यपि हमारा इस विषय पर पूर्ण चर्चा हुई थी, लेकिन हम दोबारा से इस पर चर्चा कर रहे हैं और प्रभुपाद इसको अनुमोदित करते हैं कि बार बार चीजें कही जानी चाहिए.
So, this is Gaur Samaj, and so this is text 76 where Mahaprabhu is converting the Shaivites into Vaishnavas.
तो 76 नंबर प्यार में चैतन्य महाप्रभु शिव भक्तों को वैष्णव बना रहे हैं.
So we've run out of time. Next time we'll be starting with text 77, and next time we'll make it to text 79. Okay. Oh, it's milking the Suravee cow, right? There's a lot of interesting things we should discuss, you see.
तो समय कम है, इसलिए अब हम विराम देंगे और अगली बार 77 नंबर प्यार से शुरू करके फिर हम 79 नंबर प्यार को उच्चारण करेंगे.
Any questions?
किसी का कोई प्रश्न है?
Everybody's understood clearly.
सब समझ गए हैं अच्छे से?
Yeah, Shamakund.
हरे कृष्ण महाराज. भारत इज ऑलरेडी अनदर नेम ऑफ इंडिया, सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस प्रिडिक्शन दैट इन द फ्यूचर नेम ऑफ इंडिया विल बी चेंज टू भारत? आर दे गोइंग टू पास सम रेजोल्यूशन मेंटेनिंग द नेम इंडिया ऑल टुगेदर दैट नोबडी शुड से इंडिया?
Thank you.
Okay, you can ask the question in Hindi.
तो प्रोजी का प्रश्न ये है कि क्योंकि इंडिया और भारत एक ही नाम है तो हम ये कह समझें जो महाराज ने भविष्यवाणी की है कि भविष्य में इंडिया का नाम भारत हो जाएगा.
That's a fair question.
तो क्या वो रिजोल्यूशन पास करेंगे? Will they pass a resolution?
So, 5,000 years ago, was this continent known as India? No.
तो 5,000 वर्ष पूर्व क्या ये भूमि को इंडिया कहते थे?
We're going back to Vedic culture. In fact, I don't know, and I doubt any of you are very well versed in history. But at what point did they change the name from? Who changed the name from Bharatvarsh to India?
तो 5000 वर्ष पूर्व जब वैदिक संस्कृति का प्रचलन था तो हम यहाँ इस जगह को भारत कहा जाता था और हम नहीं जानते कि कब और कैसे किसने भारत का नाम इंडिया रखा. आप में से कोई जानता है?
Okay, guys, look it up on the net.
तो इस पे आप इंटरनेट पे देखिए.
This continent was known since the beginning of the universe as Bharatvarsh. No, actually, maybe not, because it's after Maharshi Bharat. There's it can be different reasons why it's called Bharat's verse.
तो महाराज भरत के शासन के बाद से इस पूरे क्षेत्र को भारतवर्ष कहा जाता है.
So why they changed it to India?
तो क्यों उन्होंने इंडिया रख दिया?
Look it on the net. I can't answer that question.
इंटरनेट पे आप देखिए, इसका उत्तर ढूंढिए.
But it will be a major step towards reviving Vedic culture because it's a message to the world. That's the point. We are proud of this culture and we are proud of our true heritage and true history, not the false lies propagated by the British and continued under modern secularism. We want to eradicate that for good, and it will be wiped off. You know the word eradicate? Oh, good, good. He knows a few fancy words. Okay.
तो ये पूरे विश्व को एक संदेश है कि जब हम इंडिया का नाम भारत रखेंगे तो हम ये संदेश देंगे कि हमें अपनी संस्कृति पे गर्व है. जो असली संस्कृति है हमारी वैदिक संस्कृति, उस पे गर्व है, और ना कि जो कृत्रिम संस्कृति जो कि अंग्रेजों के शासन से हुई और अब उसको आगे लिया लेके जा रहा है मॉडर्न सेक्युलरिज्म के अंतर्गत.
ओके, जग गुरु सिर बाबा की जय. ग्रंथ राशि चैतन्य चरणमृत की जय. गौ प्रेमानंद हरि हरि बोलो.